ओम शांति। सभी भाई बहने सेवा में आकर खुश हैं, बहुत खुश हैं। ठंडी हवाएं हैं आपके वहां, तो ठंडी हवाएं नहीं मिलती होगी। सिक्योरिटी वाले में कहां से आए हैं भाई बहने? कहां से? रायपुर हल्द्वानी। अच्छा। तो अब संगम युग पर हम सभी को क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? हम बहुत भाग्यवान हैं। और एक बहुत सुंदर चिंतन सभी को करना चाहिए, संगम युग केवल अति भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है। भगवान अपना सब कुछ देने हमें आया है, आया है या नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए, ये चिंतन सब करेंगे। ये सुंदर मौका है भाग्य बनाने का, हमें इसका संपूर्ण लाभ उठाना चाहिए। दुनिया में आप सब रहते हैं, रहे हैं, जो मनुष्य समय का लाभ उठाना जानता है वो बहुत बुद्धिमान है, समझदार है। एग्जाम का समय आ गया हो और बच्चे खेल कूद में मगन हो, कोई उन्हें बुद्धिमान मानेगा? बिजनेस का समय चल रहा हो और बिजनेसमैन सोया हो, सेवा चल रही हो भगवान की, भाग्य बट रहा हो खुले हाथ और भाग्य लेने वाले करवट न बदल रहे हो, क्या कहेंगे उन्हें? सब चिंतन करें। बहुत भाग्य से, सबसे बड़ा भाग्य है भगवान मिले, और केवल वही नहीं मिले, देखो हमने तो इतना चाहा था तुम एक बार दर्शन दे दो, इतना ही चाहा था ना बच्चे कुमारों ने, और हो क्या गया? वो आ गया, हमारा हो गया, हम उसके बहुत समीप आ गए। और केवल आया नहीं, क्या लेकर आया? ताज और तिलक, तख्त दिखा रहा है, लो आ जाओ जिसको पहनना हो। श्रेष्ठ भाग्य, जैसा चाहे भाग्य मुझसे ले लो, वरदान ले लो, शक्तियां ले लो, जन्म जन्म के लिए जो चाहे लो, कहेगा कोई ऐसा? तो अपने भाग्य को देखकर सभी भाई बहने चिंतन करेंगे, यहाँ आप सेवा भी करेंगे, बहुत ज्यादा सेवा नहीं होगी कि आप 24 घंटे बिजी रहेंगे, आपको समय मिलेगा बहुत अच्छा। स्वचिंतन करें, हम क्या करें जो बाबा से अधिक प्राप्त करें। हम उन खजानों की चर्चा करेंगे अब। इसके लिए परम आवश्यक है अपने मन को शांत करना, खुशी से भरना, क्वेश्चन से मुक्त करना, कंप्लेंट से मुक्त करना। नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, स्लोगन बना लें अपना। संसार में सब कुछ है, वैरायटी। सब हम जैसे नहीं होंगे, सब महान भी नहीं होंगे। जैसे आज बाबा कह रहे थे, नकइयों ने तो क्या गांठ बांध ली है। आज तो बाबा पूरे जोश होश में था, गांठ मान ली है, हमें थर्ड क्लास ही रहना है, हमें सुधरना ही नहीं है। कोई आया होगा केस ऐसा बाबा के सामने ज्यादा गरम, तो बाबा उस पर सबको समझाने देते थे। हम विचार करेंगे और अपने से बात करें। बुद्धिमान समझदार वही है जो इधर उधर न देखकर चित्त को प्रसन्न करे, शांत करे और बाबा से सब कुछ प्राप्त करने की उमंग भरे अपने मन में। चिंतन का बहुत अच्छी तरह मन शांत होगा, प्रसन्न होगा, क्या होगा फिर? योग बहुत अच्छा लगेगा। माताएं आती है मेरे पास, हम बहुत बीमार रहते हैं, चेहरे से उनके पता चलता है कि तन तो इनका बीमार है ही। माताएं खुद ही बोल रही हैं। पर उससे ज्यादा मन बीमार है, भारी है, भारी। एक विशेष चीज पर आपका ध्यान दिलाता हूं, कईयों ने अपने मन में, अपनी बुद्धि में कोई ऐसी चीज बैठा ली है जो बड़ी खराब है। उदाहरण देता हूं मैं, जीवन में 25-30 साल की आयु में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, जिसे बहुत प्यार था, उसका शोक बैठा लिया है इधर, उससे बाहर निकल नहीं पा रही है आत्मा। सब कुछ मिल गया है, अब परिवार हो गया, अच्छा पैसा हो गया, धन हो गया, और सब संबंध स्वीट मधुर, लेकिन वो जो एक चीज इधर बैठा ली थी, शोक, दुख बहुत, वो क्या कर रहा है, उसको वर्तमान प्राप्तियों का आनंद नहीं लेने देता। जैसे हमने अपने पास कोई गंदगी रख ली हो, पॉकेट में रख ली हो, क्या निकलता रहेगा उससे? ऐसे ही बुद्धि में कोई ऐसी चीज होल्ड कर ली, पकड़ ली, पकड़ के रख ली, छोड़ा नहीं, तो उससे बैड एनर्जी ब्रेन को लगातार जाती रहेगी, उसका बुरा इफेक्ट होता रहेगा पूरे जीवन भर। इसलिए क्या करना है, छोड़ो, उन चीजों को छोड़ो जो बीत गई। पहली बात, किसी ने आपका बहुत अपमान किया है, आपको 5-7 साल अपमानित होकर रहना पड़ा है, फिर वो खेल पूरा हो गया, आप ठीक ठाक हैं, लेकिन उसकी बैड फीलिंग आपने बुद्धि में समाई रखी है, होल्ड कर ली है, वो आपको खुश नहीं रहने देगी, छोड़ो उसे। अब कैसे छोड़ें? हम सब बाबा के बच्चों के लिए उसको छोड़ने का सबसे सुंदर तरीका है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ, आगे सोचो, हुआ बहुत बुरा हुआ मान लो, लेकिन अब तो हमें, बोलो अपने मुख से, एक तो भगवान मिल गया, उसका श्रेष्ठ ज्ञान मिल गया, भगवान का प्यार मिल गया, उसे जीवन जीने का तरीका मिल गया, उसकी समीपता मिल गई। हम जैसा कोई होगा जिन्हें आंख खुलते ही रोज सवेरे दर्शन थोड़ा ही भगवान मिलता हो, और भाग्य लेकर आया हो, खड़ा हो, लो भोलानाथ बनकर बैठा हो, ले लो जो चाहे लेना है मेरे से, क्षमा करा लो कोई गलती, वरदान ले लो, शक्ति ले लो, खिंचवा लो भाग्य की शेष रेखाएं। ऐसा कोई होगा संसार में जिसे उठते ही भगवान मिलता हो? लोगों को उठते ही क्या मिलता है संसार में? लोग देर से उठेंगे। एक बहन ने फोन किया, बात तो हंसी की है, पति, मैं, मेरी सास, तीन ही लोग हैं, एक बच्चा, झगड़ा है इसका पति से भी और सास से भी, बेचारे ने ज्ञान लिया था बचपन में, फिर छोड़ दिया, शादी हो गई। मैंने कहा कैसे झगड़ा होता है तुम्हारा, एक बात तो सुनाओ। कहा पति को 10 बजे 9:30 ऑफिस जाना होता है 10 बजे के लिए, कहा उठता ही नहीं, मैं उठाती हूँ उठता ही नहीं, फिर जब उठ जाता है तो लड़ता है क्यों नहीं उठाया, सास लड़ती है तुम क्यों नहीं उठाती इसे। देख कितना वंडरफुल झगड़ा है ना, घरों में ये झगड़े कोई बात है वाला, उसको खुद उठना चाहिए, मैंने तो कहा ठंडा पानी डाल दिया करो थोड़ा सा, फिर तो और झगड़ा होगा। ऐसे झगड़े परिवारों में चलते रहते हैं। लोग 9 बजे उठेंगे, क्या मिलेगा उठते ही? अखबार टेबल पे उठेंगे, अखबार पढ़ेंगे, अखबारों में कैसे न्यूज सारे खराब। अगर आप यूपी में जाओ तो 5-7 मर्डर रोज, फलानी जगह अपहरण हो गया, उसने ये कर दिया, पता है ना रुड़की वाली माता को क्या क्या वहां होता है। मैं जाता हूं कभी तो देखता ही नहीं है, सब गंदगी से भरी हुई चीजें, इनको देखना नहीं चाहिए। उठते ही ये सब पढ़ेंगे, सबकॉन्शियस माइंड खुला है, एक्टिव है, ये सब अशांति मनुष्य उठते ही ले लेता है। फिर वो चाहता है जीवन में टेंशन न हो, अशांति न हो, परिवार का सब कुछ बहुत अच्छा चले। चलेगा क्या? उठते ही बीज ही गंदा डाल लिया। इसलिए सभी ध्यान रखेंगे आंख खुली, सुंदर चिंतन। इसलिए देखो इंडियन कल्चर में, हमारी भारत की सभ्यता में, भक्ति में भी कितनी अच्छी बातें रही। लोग अपने घरों मंदिर बनाते थे, गांव में मंदिर, उठते ही लोग मंदिर में जाएंगे, जिसके घर में मंदिर है उठते ही। तो एक अच्छे विचारों से दिनचर्या प्रारंभ हो, इसका सबको ध्यान रखना है। उठते ही हमारे मन में सुंदर विचार हो, प्रभु मिलन का सुख रोज मिले, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही हो, सुंदर संकल्पों का आनंद रोज प्राप्त हो। हमारा बहुत बड़ा खजाना है हमारे श्रेष्ठ संकल्प। मैं माताओं की बात कह रहा था, पहले माताओं की, अच्छा लगेगा माताओं को, बोझ न रखें इधर, बहुतों ने बोझ रख लिया है। समस्याएं भी हैं, नो डाउट समस्याएं हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि समस्याएं नहीं है। कोई परिवार अभी मेरे से मिलने आया, विज्ञान में भी नहीं, हमारे लौकिक जगह से था, मेरे से कभी मिला था, तो आज फिर यहाँ आए थे तो मिलने आए। मैंने कहा बोलो कैसा है, कि सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन लड़की 38 ईयर्स की हो गई, शादी नहीं हो रही, लड़का भी ऐसे ही, उसे छोटा 35-36 का, उसकी भी नहीं हो रही, दोनों लेकिन अच्छी जॉब में, समस्या तो है। बेचारे माँ बाप दोनों, देखो ना, उनको खुशी न गम, एक बीच की स्थिति में लटक रहे हैं। बच्चे अच्छे, एकदम अच्छी पोस्ट पर, लेकिन मैरिज नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से समस्याएं और दुविधाएं तो मनुष्यों के पास रहती है। मैंने उन्हें कहा कि अब योग सीख लो, थोड़े थोड़े आते जाते, कभी कभी योग सीख लो। योग ऐसी शक्ति है कि उसके वाइब्रेशन से अनेक चीजें स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। हम तो रोज एक दो गुड न्यूज सुनते हैं, लोग अच्छे अभ्यास करते हैं। अभी मैं आ रहा था तो एक लड़का फोन कर रहा, भैया अभ्यास मैंने किए, मुझे सफलता मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा मुझे नहीं, बाबा को भोग लगवाओ, सफलता मिली है ना अच्छी, तो बाबा को भोग लगवाओ, भगवान तक तुम्हारी जो शुक्रिया है वो पहुंचे। तो माताएं क्या करेंगी, अपने को हल्का करो, समस्याएं हैं, जीना भी उनमें ही है, अपने को हल्का करना ही पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं। भारी होकर जिएंगे, समस्याएं भारी होती जाएंगी। जिस बात पे ज्यादा सोचते रहेंगे वो और विकराल रूप लेती जाएगी। अपने को हल्का करना है, करना है, कैसे करेंगे, हल्का करना जरूर है। आप सभी जो सेवा में यहाँ आए हैं भाई बहने, हल्का करो अपने को। क्या सीन बनाएंगे, एक सीन बनाया करें रोज कुछ दिन। बाप दादा सामने आ गए, हाथ फैलाकर, बाहें फैलाकर कह रहे हैं बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दो। देखो सामने बाप दादा को, और आप दे दो, लो उसके महावाक्य याद कर लें, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा। पहचाने सभी छोटे भी बाबा को पहचाने, वो अपने बच्चों को भारी नहीं देखना चाहता। भगवान के बच्चे ही खुश ना हो कैसा लगेगा उसे। लोग तो उसे कहेंगे ना, पहले अपनों को तो खुश करो फिर हमसे बात करना। एक हमारे यहाँ कुमार आता था बाबा के समय से, बड़ा हंसमुख था, जोली था, और बाबा के बारे में कविता बनाई उसने कि बड़ा लेक्चर करते हो, ऊपर बैठकर जरा हमारे पास आके तो देखो कितनी समस्याएं हैं यहाँ, क्या क्या हैं। तो एक बार बाबा ने मुरली चलाई, कई बच्चों को क्रोध आता है, तो क्या कहते हैं, बाबा मुझे क्रोध आया नहीं, दिलाया गया है। अगर मेरी जगह आप भी होते आपको भी आ जाता, बात ही इतनी खराब थी। तो बाबा मुस्कुराते हैं। अब बाबा को जरा सामने खड़ा कर लो, बुला लो, और देखो बाबा बाहें पसार कर कह रहा है, सारे बोझ मेरे हवाले कर दो। कर देंगे या नहीं करेंगी माताएं, या मैं पकड़ के रखना ही है? कर दो, हल्का भी कर दो, लो। अरे जिसका बाप ही भगवान हो क्या करेंगे, सोचो। जिसका बाप ही भगवान हो उसे कोई चिंता रखनी चाहिए? जोड़ो नाता। हमारा बाप सर्व शक्तियों से संपन्न कैसा है वो? अगर वो चुटकी बजा दे क्या हो जाए, सातों सागर सूख जाएं। अगर वो चुटकी बजा दे, संकल्प कर ले, हिमालय का अस्तित्व नष्ट हो जाए। हम पहचाने उसकी शक्तियों को। अगर वो संकल्प कर दे क्या, अभी अभी ये धरा स्वर्ग में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा, स्वर्ग बन जाएगी और वो हमारा है। फील करो, इस अधिकार को रियलाइज करो और इसको यूज करना है। तो मन के सारे बोझ फिर से देंगे या नहीं? ये सीन रोज एक बार बनाया करें और अपने को थोड़ा हल्का करें, हल्का और प्रसन्न। केवल हल्का रहने से काम नहीं होता, बहुत खुशी भी चाहिए हमें और बहुत शक्तियां भी चाहिए। शक्तियां हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है, ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। गिनाओ खजाने, खुशी का खजाना, आगे बढ़ो, ये तो मैंने बता दिए। बोलो भाई, बोलेंगे, दुआओं का खजाना, संकल्पों का खजाना, बोलो, और समय का खजाना, पवित्रता हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना, और एक खजाना और जिस पर मैं आजकल सबका बहुत ध्यान दिलाता हूं, पुण्य कर्मों का खजाना। गुणों का भी खजाना है, पुण्य कर्मों का खजाना। मैं आज दो बातों पे आपका ध्यान दिलाता हूं, दुआओं का खजाना और पुण्य कर्मों का खजाना। सभी ध्यान दें। अगर आपकी तबीयत बिल्कुल ही बिगड़ती जा रही है, बैठी है माताएं जो मुझे कह रही थी बहुत बीमार, एक जाती है दूसरी आ जाती है, वो गई नहीं तीसरी तैयार, वो भी है चौथी आ गई, क्या करें? पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाएं। अब पाप मनुष्य को बहुत मार रहा है, जिसने जो किया है जन्म जन्म में। ये भी कह देते हैं ज्ञानी आत्माएं भी, इस जन्म में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन ये पता थोड़ा ही चलता है दुख देने वालों, वो तो खुश होते हैं दुख देके, ठीक बात है या नहीं? दुख देके खुश होते हैं। एक ऐसे ही कह रहा था, मैंने कोई पाप नहीं किया जीवन में, मैं पाप से बहुत डरता हूँ। मैंने बात बात में पूछ लिया, वेजिटेरियन हो नॉन वेज? हाँ नॉन वेज तो आजकल चलता ही है। मैंने कहा कितने मुर्गों की गर्दन मरोड़ी है और कहते हो पाप नहीं किया? तुम्हारी उसकी बुद्धि भी तो काम नहीं करती ना, उन्हें पता ही नहीं ये भी पाप है, सभी खा रहे हैं। आजकल फैशन हो गया ड्रिंकिंग का, हो गया या नहीं? बता दू एक अनुभव छोटा सा, बिना नाम लिए, कल कोई आए, बहुत शराब पी मैंने जीवन भर, शराब का असर उन पे दिखाई दे रहा था, ज्ञान में आए 2 साल से। कहा पहले भी एक बार यहाँ होके गया था, शराब छोड़ी थी फिर पीनी शुरू कर दी, फिर अब ज्ञान लिया तो फाइनली छोड़ दी, लेकिन मेरे दोनों बच्चे भी पीने लगे। मैंने कहा तो तुम्हारी गिफ्ट है ना उनको, मैंने उसे ही कहा कि भाई तुम तो कह भी नहीं सकते उन्हें कि नहीं पियो। एक लड़का साथ ही बैठा था, सामने ही था, मैंने कहा तुम्हें तो नहीं पीना चाहिए, छोटी आयु देखो मुश्किल से 22-24 साल के, और एक चीज सभी को जाननी चाहिए जो मैंने उनको बताया, वो जो उसका लड़का बैठा था छोटा, उसको सुनता नहीं, बहुत बहुत कम, नसें वीक हो चुकी हैं। मैंने उन्हें बताया कि जो भी शरीर का अंग वीक हो जाता है, ये शराब उसको पूरी तरह डैमेज कर देती है। अगर तुम अपने कानों को ठीक करना चाहते हो, इनमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो ड्रिंकिंग छोड़ो, लेकिन बाप की जो वर्षा मिला था उसका क्या हो। तब इसको समझ में आया कि जो काम मैंने किया अब बच्चे वही कर रहे हैं, मोरल पावर भी नहीं है उनको समझाने की कि नहीं पियो, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो परिवारों में कैसा रहता है, पैसा भी जाता है, सारा खेल भी बिगड़ता है। तो ये जो फैशन बढ़ गए आजकल ड्रिंकिंग का, जो जितना रॉयल, जिसके पास जितने ज्यादा पैसे, अगर वो पीता नहीं तो लोग कहेंगे तुम भी कोई आदमी हो, पुरानी दुनिया में जी रहे हो, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, और ये सब पाप है। पाप नहीं तो पाप का मूल अवश्य है। बचेंगे इन सब से तो मैं आपको कह रहा था, पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाना है। अगर आपके जीवन में बहुत कठिनाई आ रही है, अगर आपके काम बिगड़ते जा रहे हैं, कई लोग बताते हैं, एक व्यक्ति बार बार फोन करता है, 25 साल हो गए धंधे ठीक नहीं चल रहे हमारे, मनुष्य को पहचान लेना चाहिए पाप का खाता बढ़ा हुआ है। पाप करते हुए बहुत आनंद लिया था, ये बात बुरी तो लगती है सबको, पर जाननी जरूरी है, जाननी चाहिए या नहीं, जाननी चाहिए। मनुष्य मन से भी पाप करता है, बोल से भी पाप करता है, ये ऐसे पाप जिनको लोग समझते नहीं है, कटु वचन बोलकर दूसरे की खुशी छीन ली, पाप हुआ पुण्य। लड़की घर में शादी होकर आई थी बहू बनकर, उसको कष्ट पहुंचाया, विवश कर दिया, वापिस जाओ, पाप हुआ पुण्य। सास तो सोचती होगी वाह मैं कितनी अच्छी हूँ, भगा दिया बहू को, बहुत पढ़ी लिखी थी, बड़ा सोचती थी मैं भी कुछ हूँ, देखा मैं बिना पढ़ी लिखी उसको भगा दिया, लेकिन पाप बहुत बढ़ गया। लोग व्यवहार से पाप कर रहे हैं, सभी बचेंगे। पुण्य ही मनुष्य के समय पर सच्चे मित्र बनते हैं, इसलिए पुण्यों को अपना फ्रेंड बनाओ, सभी ध्यान दो, सभी ज्ञान में आने के बाद भी कई लोग ये छोटी मोटी गलती करते रहते हैं, चलो बाकी पाप छूट गए, खान पान सात्विक हो गया, लेकिन ये मुख का पाप, ये मन से बदला लेने का पाप, किसी व्यक्ति से आप बदला लेना चाहते हैं, वो संकल्प आपको सोने नहीं देगा, या सोने देगा बाबा से ज्यादा उसकी याद आएगी, जो भाग्य देने आया है उसको याद नहीं करेंगे, जिसने कष्ट पहुंचाया उसको सोते जगते याद करेंगे। इसलिए पुण्य का खाता बहुत बढ़ाते चलना है, सभी अंडरलाइन करें, और पुण्य सबसे बड़ा किसी को दुख न देना, और उससे भी बड़ा पुण्य पवित्र जीवन व्यतीत करना। पवित्रता में बहुत बड़ी शक्ति है, आज बाबा की मुरली उसी पे थी शुरू से, सत्यता सच्चाई, प्योरिटी ही रियलिटी है, यही सच्चाई है। पुण्य का खाता सभी विचार कर लें, हमसे जाने अनजाने में कोई पाप तो नहीं होता रहता। देखो आजकल एक और प्रथा चली है समाज में, लोभ विकार बहुत बढ़ा हुआ है, रोज दो चार केस ऐसे आते हैं, हमारी जमीन हमारे बड़े भाई ने यानी जेठ ने ढंग से अपने नाम करा ली और किसी को बेच भी दी, क्या करूं मैं, कौन सा योग का प्रयोग करूं जो जमीन वापस मिल जाए। मैंने कहा अरे तुम इतने भोले, अब नाम उनके हो गए, अब तुम्हारा अधिकार ही नहीं रहा, योग अब अपने भी कर्म विनाश के लिए करो, जमीन तो गई तुमसे, नाम ही कर दी। 50 लाख रुपए दे दिए थे अपने ही लोगों को, बहुत परेशानी में थे वो, हमने दे दिए बड़ी दया की, अब कहते हैं हम तो नहीं देंगे, सीधा यही भाषा, हम नहीं देंगे, जो चाहे कर लो, साथ में धमकी भी दे देते हैं, जो करना हो कर लो, अपने दूसरे नहीं, अपने थे तो लिखा पढ़ी भी नहीं की। अभी डराते हैं, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, तुमने हमें पैसे दिए, दिए ही। ये कलयुग के अंत का प्रभाव है और मनुष्य सोचता नहीं कि देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा या नहीं? रोज हमारे पास केस आते हैं, कल आज भी आए, दूर दूर से लोग आए अपने छोटे बच्चे को लेकर, बचपन से ही किडनी फेल, बचपन से ही डायबिटीज का पेशेंट, बचपन से ही हार्ट पेशेंट, बचपन से, अभी पैदा ही हुआ दो चार मास में ही पता चला एक का वंडरफुल ब्रेन ही नहीं है। आप हैरान होंगे, मैं भी कहा तुम्हें किसने बता दिया ब्रेन नहीं है, कि सचमुच नहीं है, सब डॉक्टरों ने देख लिया बच्चे को ब्रेन ही नहीं है, समस्या है या नहीं? तो जितना कर्ज लिया था और दिया नहीं था वो सारा लेके जाएगा और फिर मृत्यु को प्राप्त होगा, रोता भी छोड़ के जाएगा आपको, होगा या नहीं? कोई किसी का एक रुपया भी रख ले वो ब्याज सहित देना ही पड़ेगा। माताएं भी सावधान रहें सभी, ये धन का लोभ बहुतों से पाप करा रहा है, इससे बचेंगे। धन ही केवल सुख देने वाला नहीं है, सुख मनुष्य को उसके पुण्य कर्मों से मिलते हैं, उसके अच्छे चिंतन से मिलते हैं। मैं बहुत ध्यान दिलाता हूँ आजकल, बहुत आते हैं, चेहरा देखते हैं उनका साफ दिखाई देता है, बोल तो नहीं सकते, पाप का बोझ सिर पर है अति, इसलिए न सुख से सो पा रहे हैं, न चेहरे पे खुशी का कोई लक्षण है। बचेंगे सभी, पुण्य कर्म, अब हमें भगवान मिल गया, उसके मिलन की, सत्य ज्ञान की सबसे सुंदर इस प्राप्ति का लक्षण है पुण्य कर्म करना। अपने जीवन को बदलें, अपने सोचने के तरीके को बदलें, अपने विचारों को बदलें और सुखदायी हो जाएं। दूसरे की संपत्ति पे टेढ़ी नजर रखना, बोलो, माताओं से उत्तर जाता हूं इसका, बड़ा पाप है। मनुष्य बहुत सुखी हो सकता है यदि उसे भाग्य साथ दे, यदि उसके साथ पुण्य कर्म है वो साथ दे। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, लिखी थी किसी ने बहुत पहले ज्ञानामृत में। राजा भोज ने सोचा कि मैं अपनी सारी धन संपत्ति दान कर देता हूँ। हमारे भारत में दो सम्राट बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, राजा भोज और हर्षवर्धन, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उन्होंने सुना होगा, उज्जैन, दोनों ही उधर के थे। हर्षवर्धन हर 5 साल में अपनी सारी संपत्ति दान कर देता था, ऐसे भी सम्राट हुए हैं भारत में। तो राजा भोज ने सोचा मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर देता हूँ। अब मंत्री ने सोचा, अब राजा को तो कोई कुछ कह नहीं सकते, सारी संपत्ति राजा दान कर देगा फिर क्या होगा? तो जहाँ दान करने की व्यवस्था की गई थी दीवार पे उसने लिख दिया कि मनुष्य को आपत्काल के लिए कुछ धन संपत्ति बचाकर अवश्य रखनी चाहिए। राजा भोज ने पढ़ा, समझ गया मंत्री ने लिखाया है। राजा भोज ने उसके नीचे दूसरा वाक्य लिख दिया कि भाग्यवान आत्माओं को आपत्काल आता ही नहीं। बहुत बुद्धिमान हुए राजा भोज, हुए हैं ये लोग, कल्प काल्पनिक नहीं है, इधर ही उज्जैन के पास ही उनकी अब तक सब कुछ है, स्टेट बहुत लंबा चौड़ा स्टेट थे, बड़े राज होते थे उस समय। फिर मंत्री ने सोचा कि तो गड़बड़ हो गई, राजा तो मेरे से बुद्धिमान निकला। उसने फिर उसके नीचे लिखाया कि अगर भाग्य साथ न दे ऐसे समय के लिए कुछ बचा कर रख देना चाहिए। फिर अगले दिन राजा भोज आए, पढ़ा, उन्होंने कहा वाह मंत्री बहुत बुद्धिमान है। उसने उसके नीचे लिखा दिया, सोचो क्या लिखा होगा, कि जब भाग्य ही साथ नहीं देगा तो संपत्ति कहाँ से साथ देगी। मंत्री ने सोचा भाई भोज को मनाया नहीं जा सकता, कर दो सब दान। यही बात है ना, भाग्य ही साथ न दे रहा हो तो पैसा कहाँ साथ देगा। और यही सारा संसार आने वाले समय में देखेगा, पैसा है बाकी कुछ नहीं है, बाबा ने कहा हुआ है, सबको पता होना चाहिए। थैला भरकर नोट लेकर जाओगे, एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। सोने की अंगूठी दोगे, एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। धन से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा श्रेष्ठ स्थिति से। जिसकी स्थिति श्रेष्ठ होगी उसके पानी के भंडार भी भरपूर होंगे, खाने पीने के साधन भी होंगे, बीमारी है तो दवाइयां भी मिलेंगी, नहीं तो दवाइयां भी नहीं होंगी। सब अपने को तैयार करें। आने वाला समय कैसा है? अब भगवान ने कहा है, मैंने नहीं, नाजुक समय आ रहा है। मैं तो देख रहा हूँ डे बाय डे समय की नाजुकता बढ़ती जा रही है, कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और बाबा तो मुरलियों में कुछ छुपाता नहीं, सब साधन बन गए हैं ताकि विनाश फटाफट हो जाए। आज सब था ना ये, फटाफट हो जाए। भगवान को तो विनाश भी कराना है ना, क्यों क्यों? आज तो बाबा कह रहे थे आकाश का विनाश थोड़ा ही होगा, कहा ना। लेकिन इसमें एक चीज मैं और कहूं, ये जो आकाश के नीचे का वायुमंडल गंदा है ना, ये प्योरीफाई हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। जैसे एटॉमिक विस्फोट होंगे, उसकी गर्मी से जो गंदगी है ना चारों ओर, अथाओ अथाओ गंदगी, ये जलकर प्योरीफाई पवित्र हो जाएगी। ये भी देवी देवताओं के लिए होने जा रहा है। तो हम स्थिति पर बहुत ध्यान दें, काम आएगी हमारे पुण्य कर्म, हमारी श्रेष्ठ स्थिति, बचेंगे सभी पाप कर्म से, इसे किसी को दुख नहीं देना है, पक्का कर दें सभी। न लेना है न देना है, लेना भी नहीं है मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं तो क्या होता है, बच्चा बुरा बोलता है, बाप दुखी है, दुख ले लिया, लेना नहीं है। बच्ची को ससुराल में कठिनाई होने लगी, इधर माँ बाप बहुत दुखी है, क्या करें, दुख लेना नहीं है। क्यों? आप कहेंगे भगवान बड़ा कठोर है, कहता है दुखी भी ना हो जाओ, हमारे बच्चे दुखी और हम दुखी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चे दुखी तो हम तो दुखी होंगे ही ना। बड़ा खराब है बाबा, कैसी कैसी बात कह देता है। क्यों कहता है दुख न लो, कोई ये रहस्य बताओ। अब अगर हम दुखी होंगे तो हम दूसरों का दुख दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान मिला है बहुत श्रेष्ठ, साक्षी भाव धारण करके हम सुखों के वाइब्रेशंस यदि उन्हें भेजेंगे, योग के वाइब्रेशंस भेजेंगे, तो वहाँ भी सब कुछ बदल जाएगा। ये बात मैंने इसलिए कही, आजकल ये सब बहुत हो रहा है। मैरिज तो करा देते हैं बच्चों की, लड़कियों की, लेकिन वो वहाँ सुखी रहे या नहीं इसकी गारंटी नहीं। इसलिए भारत में भी डिवोर्स के केस बहुत होने लगे, तलाक जो नहीं होते थे 5-7 साल में संख्या बहुत बढ़ गई है। इसलिए दहेज देते हैं ना बच्ची को, पुण्य कर्मों की भी एक गठरी बांध के दे देना। माताएं देंगी? नहीं कर रही, माताओं की गर्दन इधर उधर नहीं हो रही। अपनी लड़की को दहेज के साथ पुण्य कर्मों की एक पेटी भी बनाकर दे देना, और वो आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास पुण्य कर्मों का भंडार बहुत होगा। बस दुआएं दे देना, अब तुम सुखी रहो, तुम्हारे सुखों के दिन प्रारंभ, दुख समाप्त। माताओं को अच्छे वाइब्रेशंस अपने बच्चों को देने हैं। मैं माताओं को इसलिए कहता हूँ, भाई लोग कार्यों में व्यस्त भी रहते हैं, माताएं व्यर्थ में व्यस्त न हो जाएं घरों में, बुरा न मानना मेरी बात। पड़ोसी क्या कर रहे हैं, सारे गांव में क्या क्या हो रहा है, वो सब न्यूज रख न लें इधर, थोड़ा हल्का स्वच्छ करो अपने को। दूसरी चीज जिस पर मैं आपका ध्यान दिला रहा था, पुण्य कर्मों से जुड़ी हुई बात है, दुआएं। और हम सब ऐसे भाग्यवान हैं कि हमें किसकी दुआएं मिलती हैं, स्वयं भगवान की दुआएं। देखो मुस्लिम धर्म में बात बात में वो कहेंगे खुदा से दुआ करो, खुदा से दुआ मांगो। अब यहां मांगने के बिना मिल रही है, और बाबा हमें ऐसा बना देता है कि हम दुआएं दे सारे संसार को, हमारी ब्लेसिंग्स संसार का कल्याण करे। तो भगवान से यदि दुआएं लेनी है बिना मांगे तो क्या करेंगे? मांगने से नहीं, मांगने से तो थोड़ी सी मिलेगी। किनको दुआएं मिलती हैं भगवान की? जो उनके आज्ञाकारी बनते हैं। देखो आप सेवा में आए हैं, आपको पता होना चाहिए आपकी तरफ अब बाबा की दृष्टि आ गई, आप उसके कार्य को पूर्ण करने आए हैं, उसकी दृष्टि आ गई है। इसलिए जो उसका कार्य सच्चे दिल से करते हैं उन पर भगवान राजी होता है। राजी करना है, भक्ति में लोग तपस्या करते थे भगवान राजी हो जाए, प्रकट हो जाए और कह दे हमें मांग लो क्या वरदान मांगना है, और अब वो राजी है, वरदान देने आया है। वरदान की बात आई तो हंसी की बात याद आ गई, किसी ने ऐसी बहुत भक्ति की, भगवान राजी हुए, कहा मांग लो क्या मांगना है, तो उसने कहा मेरे साथ जो हो पड़ोसी, जो मुझे मिले पड़ोसी को डबल मिले। प्रभु जी बड़े खुश हुए, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, अपने लिए तो सोचता ही है लेकिन पड़ोसी के लिए भी सोचता है। पहले दिन आके पता उसने क्या मांगा? मेरी एक आंख फूट जाए ताकि पड़ोसी की दोनों फूटे। देखो ये करते हैं भगत, कहानी बनाई है लोगों ने कैसी दुर्भावनाएं रखते हैं दूसरों के लिए फिर दूसरा संकल्प किया मेरे घर के सामने एक कुआ खुद जाए ताकि पड़ोसी के घर के आगे दो खुदे और वो अंधा है तो गिर जाए। हम लोग तो इनसे मुक्त है ना, भगवान राजी हुआ है और दुआएं दे रहा है, उसकी ब्लेसिंग्स के हम पात्र बन जाएं, और इससे होगा हमारे बिगड़े काम संवर जाएंगे, हमारी दुविधाएं नष्ट हो जाएंगी, हमें महसूस होने लगेगा कि सर्वशक्तिवान का साथ मिल रहा है, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मिल रही हैं, ये अनुभव होने लगेगा। और फिर दुआएं लेनी है सबको, सबकी, मनुष्य आत्माओं की, दूसरों को मदद करके उन्हें सहयोग देकर। माताएं भी जो एक कमरे में कई कई रहती हैं, एक दूसरे की दुआएं लेंगे। ऐसे नहीं रात को 11 बजे कमरे में पहुंची और आते ही पहला काम किया लाइट जलाई, सब उठो मैं सोने जा रही हूं तुम उठो, ये नहीं, दुआएं लेनी है। ऐसा नहीं बाथरूम में नहाने गए तो मुझे तो एक घंटा चाहिए तुम भले ही बाहर खड़े रहो, ये नहीं, दूसरों का ध्यान रखना है। भाई सोच रहे हैं सारी बातें माताओं की जा रही है, हम शायद ठीक ठाक है। दूसरों का ध्यान रखेंगे, आपस में प्यार होगा और दूसरे एक दूसरे की दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और ये ब्लेसिंग्स हमें समय पर बहुत मदद करती हैं। सबको याद रखना है दूसरों की शुभ भावनाएं सदा हमें मदद करती हैं। बस एक सूक्ष्म बात कह के हम समाप्त करेंगे। देखिए बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आती, आजकल ये बीमारी बढ़ती जा रही है चिंताओं के कारण, टेंशन के कारण, पर इसका असली कारण कुछ और है। इसलिए मैं ऐसे केसेज में सबको एक बात सिखाता हूं कि आप उन सब आत्माओं से क्षमा याचना करो जिनको पिछले हजारों साल में कष्ट दिया है। हमें याद तो नहीं है, द्वापर युग से हमने किसी को भी कष्ट दिया हो उससे हमें क्षमा याचना करनी है। क्यों और इससे क्या होगा? मान लो अब से 1000 साल पहले हमने किसी को बहुत तंग किया था, उसका नुकसान किया था, तो उसकी बद्दुआएं हमारे साथ थी तब, और उन बद्दुआओं के वाइब्रेशंस अब तक भी हमसे जुड़े हुए हैं। सभी याद रखेंगे इस बात को। मान लो हमने हजार लोगों को परेशान किया है पिछले जन्मों में, उन हजार लोगों की बद्दुआओं के वाइब्रेशंस जिसको हम बैड एनर्जी कहते हैं वो हम पर आ रही है, हमें सफल नहीं होने देती, हमें सोने नहीं देती, हमें सुखी नहीं रहने देती, इसको काटते हम? समझ ले हजार रस्सियां हमें बांधे हुए हैं। अब हम सवेरे ही संकल्प करें कि वो सब आत्माएं इमर्ज हो जाएं जिन्हें हमने कस दिया है, और बाबा को याद करके हाथ जोड़कर मन ही मन सच्चे मन से उनसे क्षमा याचना करें, दुआएं दें, सुखी हो जाओ। ये रस्सियां कट जाएंगी, हमारी लाइन क्लियर होगी, योग अच्छा लगेगा, खुशी रहेगी, इस जीवन जीने का आनंद आएगा। रियलाइज कर रहे हैं ना सभी सत्य को? ये सत्य सबके लिए है, बड़ा हो या छोटा। अब मान लो कोई बहुत पावरफुल राजा रहा था द्वापर में, कलयुग में, उन्हें ऑर्डर दिया था कोई गलत और हजारों लोगों को कष्ट हो गया, वो मन ही मन गाली देते राजा को, पर कर तो कुछ नहीं सकते थे, वो बैड एनर्जी उस आत्मा के साथ लगी आ रही है अब तक। अब वो जहां भी होगा इस समय उसको कष्ट हो रहा होगा, नींद नहीं आएगी, बीमारियां होंगी, मन बेचैन रहेगा, परिवार में दुखी रहेंगे सब। छायाचना और योग बल और दुआएं देना, इनसे हम अपने को सरल करें, मुक्त करें, आनंदित करें। तो सभी आए हैं स्वचिंतन करना और एक अच्छा प्लान पुरुषार्थ का लेकर यहाँ से जाना, जो घर में रहते अपने काम धंधों में रहते आप कर सके। ऐसा बड़ा प्लान नहीं जो न किया जा सके, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। तो बहुत अच्छी आपकी यात्रा सफल हो, आनंद लें आप ठंडी हवाओं का, और किसका? बहुत अच्छे वाइब्रेशंस का, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस हैं ज्ञान सरोवर में, उनका आप सब आनंद लें, अपने चित्त को शांत करें। और अब हम योग करेंगे, बाबा को सामने ले आओ और मन के सारे बोझ उसके हवाले। ओम शांति। चलो बाप दादा के पास सूक्ष्म लोक में।
करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो के जीने किए।